मेरे बहुत बहुत प्यारे साथियों, आप सभी को डॉक्टर विजय अग्रवाल का बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। फ्रेंड्स, आज 5 अक्टूबर 2020 है और आज के इस AFEIS के लाइफ मैनेजमेंट में मैं आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं और बहुत बहुत आत्मीय अभिनंदन भी करता हूं। फ्रेंड्स, बीच में 3 दिनों का गैप हो चुका है। बृहस्पतिवार के अपने डेली ऑडियो लेक्चर में मैंने जिस बात की शुरुआत की थी, पता नहीं वह आपको याद है या नहीं है, लेकिन सुविधा की दृष्टि से मैं थोड़ी सी बात उसके बारे में करना चाहूंगा और इसके बाद फिर आज अपनी बात शुरू करूंगा। आपको शायद ध्यान हो कि बृहस्पतिवार के अपने ऑडियो की शुरुआत मैंने इस तथ्य से की थी, संदर्भ के रूप में, कि जैसे एक परिवार है और उस परिवार में मान लीजिए कि 2 बेटे हैं उनके, उसमें जो बड़ा बेटा है वो कुछ नहीं कर रहा है, या कह लीजिए कि जिसे उन्होंने एक तरीके से अयोग्य घोषित कर दिया है, कमाऊमा भी नहीं रहा है, जबकि जो छोटा बेटा है वो योग्य है, खूब कमाई कर रहा है। तो ऐसे परिवारों में सामान्यतः ये होता है कि छोटे बेटे को ज़्यादा तरजीह मिलने लगती है और इसे देख करके जो बड़ा बेटा है तिरस्कृत महसूस करता है, उसको खराब लगता है, जो स्वाभाविक भी है। ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में मैंने बात की थी और उस बात को करते हुए मैंने उपयोगितावाद का सिद्धांत आप सबके सामने रखा था। कि सीधी सी बात है कि देखिए, प्रकृति में भी हम यही करते हैं, हमारे जीवन का जो सामान्य व्यवहार समाज में होता है वह भी लगभग इसी पैटर्न पर होता है कि जो चीज़ें हमारे लिए ज़्यादा उपयोगी होती हैं उनका हम ज़्यादा सम्मान करते हैं, उनका हम ज़्यादा ध्यान रखते हैं। हाँ, ये बात जरूर है कि आदर्श के रूप में हम कह सकते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारी जो परंपरा रही है, सामाजिक परंपरा, पारिवारिक परंपरा, वो यही है कि बड़े बेटे का स्थान जो है वो सम्मानजनक होता है, छोटे बेटे से ज़्यादा ऊँचा होता है। लेकिन मुझे लगता है कि व्यावहारिक रूप में ठीक है, डे टू डे लाइफ में, डे टू डे के बिहेवियर में ये चीज़ें झलकती हैं, लेकिन जो बड़े बेटे का जो सम्मान होना चाहिए वो ऑलमोस्ट किसी न किसी रूप में बना ही रहता है। लेकिन चलिए, फिलहाल हम ये मानकर चलते हैं कि इसको लेकर के जो बड़ा बेटा है वो बहुत ज़्यादा कुंठाग्रस्त हो चुका है, दुखी रहता है, निराश रहता है, उसे समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। तो दोस्तों, आज मैं यही बताने जा रहा हूं कि वह क्या करे। एक बहुत प्रसिद्ध सिद्धांत है जीवन का, प्रसिद्ध इस मायने में कह लीजिए कि मुझे बहुत ज्यादा इस वाक्य ने प्रभावित किया है, और वो वाक्य यह है कि ऐसा कोई भी व्यक्ति इस धरती पर नहीं है जो सब कुछ कर सके। यानी कि आप जो भी उसे दे दीजिए उसमें वो एक्सीलेंट हो, कर सके का मतलब उसमें वो एक्सीलेंट हो, बिल्कुल एकदम सर्वोत्तम स्थिति में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है, और फिर कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो कुछ ना कर सके। यानी कि हर व्यक्ति कुछ न कुछ कर सकता है, कुछ न कुछ योग्यता तो उसमें है ही। अब यह बात अलग है कि जो कुछ न कुछ की जो योग्यता है उसे समाज किस रूप में देखता है, उसका कितना सम्मान करता है, उसके बदले में कितना धन वो देता है, वो एक अलग बात है, लेकिन वह कुछ न कुछ तो कर सकता है। और बकायदे इसके बारे में चरक संहिता में एक कथा है कि इस धरती पर जितनी भी चीजें प्रकृति ने बनाई हैं उनमें से एक भी चीज ऐसी नहीं है जिसका कोई उपयोग ना होता हो। खैर, चलिए हम अब उस कथा को यहां छोड़ते हैं। तो पहली बात कि कोई भी व्यक्ति जो सच में अपने को तिरस्कृत, कुंठाग्रस्त महसूस कर रहा है, उसे अपने दिमाग में इस वाक्य को बैठा लेना चाहिए कि नहीं, मैं कुछ ना कुछ तो कर सकता हूं। ठीक है, मैं इंजीनियर नहीं बन सकता, मैं अपने छोटे भाई की तरह कमाई नहीं कर सकता, मैं उतनी अच्छी भाषा नहीं बोल सकता, वो बात अलग है, लेकिन मैं कोई ना कोई एक ऐसी चीज है जो कर सकता हूं, और वो मेरा जो करना होगा वो लोगों के लिए महत्वपूर्ण होगा, लोगों की नजरों में मुझे वो उठा देगा, मैं एक तरह से इनएविटेबल बन जाऊंगा। इनएविटेबल कहने का मतलब है अपरिहार्य बन जाऊंगा, यानी कि जब उस काम की जरूरत पड़ेगी तो लोगों को मुझे ही बुलाना पड़ेगा। दोस्तों, अपनी बात में एक बहुत ही सही व्यवहारिक उदाहरण से देना चाहूंगा जो खुद हम लोगों ने देखी है। एक छोटा सा उदाहरण आप देखिए, यह सन 2011 की बात है। सन 2011 में मैं और मेरी पत्नी का 2 महीने का कनाडा और अमेरिका का टूर प्लान हुआ और वहां के लोगों ने मुझे लेक्चर्स के लिए बुलाया था। हम लोग जगह जगह पर कनाडा और अमेरिका में लेक्चर्स के लिए गए थे। 2 महीने की हमारी यह यात्रा थी। इस यात्रा की हमारी जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी अमेरिका के लॉस एंजिल्स से। लॉस एंजलिस से 10 दिन की समुद्री यात्रा करके हमें कनाडा के वैंकूवर पहुंचना था और वहां से हमारा प्रोग्राम शुरू होना था। लेकिन सच ये है कि ये पूरे के पूरे जहाज की यात्रा थी, क्रूज जिसे आप कहते हैं, और 10 दिनों तक इसमें हमें सफर करना था। और उन दस दिनों में यहां एक ग्रुप था, जहाज बहुत बड़ा था और उसमें लगभग 2500 लोग सफर कर रहे थे, लेकिन इसमें भारतीयों का एक समूह था लगभग 200-250 भारतीयों का। और चूंकि ये थोड़ा सा महंगा भी था तो जो भारतीय थे वो पैसे वाले लोग थे, तो जहाज पर भी डेली प्रोग्राम होते थे जिसमें मुझे लेक्चर देना होता था और मेरी पत्नी जो प्रीति मेरे साथ थी, या कह लीजिए मैं उनके साथ था, वो काउंसलिंग करती थी, है ना। जिन लोगों को भी पारिवारिक कोई समस्या है या सलाह लेनी है वो उनको उन्हें काउंसलिंग के लिए समय देती थी। दोस्तों उसमें एक व्यक्ति थे, एक व्यक्ति, और सच पूछे तो वो व्यक्ति एक तरह से नकारा व्यक्ति थे। वो नौकरी नहीं करते थे, कहीं काम नहीं करते थे, आर्थिक रूप में उनकी स्थिति बहुत खराब थी। और ये बात मैं इसलिए जानता था क्योंकि इसके जो प्रमुख थे, प्रमुख लोग कुछ थे इस पूरे के पूरे आयोजन के, उनमें से जो एक व्यक्ति थे वो इस व्यक्ति को बहुत अच्छे तरीके से जानते थे, तो उन्होंने ही हम लोगों को बात बात में ये बता दिया था कि ये व्यक्ति कौन है और इसे नौकरी की जरूरत रहती है और लोग बहुत ज्यादा तरजीह नहीं देते, और मैं देख भी रहा था। लेकिन मित्रों एक सबसे बड़ी बात थी, सबसे बड़ी बात यह थी कि उन 250 लोगों में, चलिए हम 250 मान लेते हैं, बहुतों को बहुत लोग नहीं जानते थे, है ना। सब लोग आए और अपना उसमें जुड़ते चले गए, लेकिन यह एक व्यक्ति ऐसा था जिसे हर कोई जानता था। अब आपको लगेगा यार हर कोई कैसे जानता था, वो इसलिए क्योंकि अगर किसी भी व्यक्ति को किसी भी बात की जरूरत पड़ती थी, किसी भी चीज की जरूरत पड़ती थी, तो वह व्यक्ति इसी व्यक्ति को बुला करके कहता था कि भैया हमको ये चाहिए, हमारे लिए ये करवा दो, हमारा ये नहीं हो रहा है। ये व्यक्ति सभी व्यक्तियों का केंद्रीय व्यक्ति बन गया था, इसके बिना लोगों का काम ही नहीं चलता था, और यह अपने इस काम में बहुत एक्सपर्ट था। आप उसे कुछ काम कर कह दीजिए, वो बिल्कुल इसे करवा के रहेगा, इसे करके रहेगा, चाहे जैसे भी हो, और आपको आकर के बता देगा, नहीं होना होगा तो आपको आकर के बता देगा। और इतना ज्यादा एक्टिव रहता था ये व्यक्ति कि देख करके मैं दंग रह जाता था। और आप देखिए कि सच पूछिए तो उस पूरे के पूरे क्रूज में जो हम लोगों का ग्रुप था उसका अगर कोई हीरो था, नायक था, तो वह यह व्यक्ति था जो जब लॉस एंजलिस में रहता था तो अपनी नौकरी के लिए, पेट पालने के लिए कभी इसके यहां काम किया, कभी उसके यहां काम किया, ये कर रहा था, लेकिन उसका जीवन चल रहा था। तो दोस्तों उसमें जो शारीरिक क्षमता थी, उस शारीरिक क्षमता का उसने इस्तेमाल किया, अपनी शारीरिक क्षमता को, अपनी शारीरिक ऊर्जा को अनुशासित किया और उसे कर्म में लगा दिया और वो हीरो बन गया। तो ये तो कम से कम सभी में होता है। अगर शारीरिक रूप से हम स्वस्थ हैं और मानसिक रूप से हम ठीक ठाक हैं तो ये काम तो कोई भी व्यक्ति कर सकता है। तो उसे हमेशा, जो भी व्यक्ति इस तरह से अपने को तिरस्कृत महसूस करते हैं, उन्हें सोचना चाहिए कि नहीं, ये काम तो मैं कर सकता हूं। और आप देखिए वो काम करने लगे और वो उसी घर में सबसे बड़े सम्मान के अधिकारी हो जाएंगे और अपना सम्मान जो लगभग लगभग चला सा गया है वापस पा लेंगे। तो दोस्तों इसीलिए मैं ये मान करके चलता हूं कि सभी में कोई ना कोई योग्यता होती ही होती है। अब यह बात अलग है कि आपने किसी एक पर्टिकुलर योग्यता को ही योग्यता मान लिया है, वह हम में है नहीं और हम उसके लिए कोशिश कर रहे हैं और बार बार असफल हो रहे हैं और हम निराश होते चले जा रहे हैं, ये एक फिर दिगर बात है। तो फ्रेंड्स आज की लाइफ मैनेजमेंट में बस इतना ही। नमस्कार।